चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के यहां पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि ने भरत जी महाराज के मन की शंकाओं का खूब बड़े प्रेम से निवारण किया। भरत जी को तो बड़ा संकोच हो रहा था कि ऋषि मुनि मुझे क्या कहेंगे, भगवान के भक्त है, भक्त होने के नाते ये यही कहेंगे कि देखो भरत तुम्हारे कारण से राम को वनवास हुआ। परंतु हमारे भरद्वाज ऋषि तो कहने लगे कि देखो भरत तुम्हारे आने से हमको भगवान के दर्शनों का फल मिल गया, सब साधन कर सुफल सुहावा, हमने आज तक जितना साधन किया उसका सुफल क्या हुआ कि लखन राम से दर्शन पावा। देखो लक्ष्मण जी का नाम पहले दिया, यहां देना तो ये चाहिए था कि राम लखन से दर्शन पावा। देखो लखन में भी तीन मात्रा है, राम में भी तीन मात्रा है और भरत में भी तीन मात्रा है, तीन मात्रा वाला नाम है तीनों का। शत्रुघ्न जी में दो एक तीन एक चार नाम आते हैं, शत्रुघ्न दो चार पांच, पांच मात्रा आती है शत्रुघ्न जी में। तो लखन राम से दर्शन पावा, लक्ष्मण जी का, राम जी का और सीता जी का दर्शन हुआ। तो यहां राम जी का नाम बाद में क्यों दिया कि लक्ष्मण जी का त्याग था, वो राम जी की केवल सेवा के लिए था तो उनके ऊपर विशेष असर पड़ा और भरत जी को भी यही सुनाने के लिए। तो कहने लगे हमने इतना इतना जप तप साधन किया उसका ये फल कि राम जी के सीता जी के लक्ष्मण जी के दर्शन हुए और उन दर्शनों का फल है कि तुम्हारे जैसे भक्त का दर्शन हो गया। ये भरद्वाज ऋषि ने कहा तो भाई भरत जी को संतोष हुआ कि नहीं चलो संत महात्मा ऋषि मुनि हमारे पर कृपा तो करते हैं लेकिन क्या करें, कोई अपनी बड़ाई सुनकर के राजी थोड़ी होने वाले। भरत जी अपनी बड़ाई सुनकर के राजी तो जो भगवान से विमुख होते हैं वो होते हैं। भरत जी के मन में तो बड़ा भारी कष्ट था भगवान के वियोग का, तो वहां कई संत महात्माओं की मंडली बैठी हुई, उन सब के बीच में भरत जी महाराज अब हाथ जोड़ करके भरद्वाज ऋषि को इशारा करते हुए कहते हैं कि महाराज यहाँ इतने इतने ऋषि समाज विराजमान है, आप लोग तीर्थराज पर रहते हो, यहाँ तो कोई बात सौगंध खाकर के भी कही जाए तो भी ये इस स्थान का अपमान है, यहाँ सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो अपने आप ही सत्य बात निकलनी चाहिए, सौगंध खाने की बात ही क्यों है। और यहां यदि मैं कोई बात बनावटी बोलता हूं तो इससे बढ़कर तो कोई संसार में नीचता है ही नहीं। हे ऋषिवर आप सर्वज्ञ हैं, मैं सत्य भाव से बात निवेदन करता हूं और राम जी भी अंतर्यामी हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी मां ने ये क्या किया, इसका दुख नहीं है मुझे। मोही न मां तू कर्तव कर सोचू, मेरी मां ने क्या कर दिया इसका मुझे शोक ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका स्वभाव ऐसा ही है, इसके स्वभाव ने ऐसा करवा दिया या इसने गलती से कर लिया, मुझे शोक नहीं है। तो के ही ऐसी करती है। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि लोग मुझे खराब कहेंगे। नई दुख जिए जगु जानी पोचू, मुझे पोचा कहेंगे। अरे भरत, शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारे कारण से राम जी वन में गए। ये बात सुनने में भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि बात सच्ची है। और मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। ना ही न डरू बिगड़े ही परलोकू, परलोक मेरा बिगड़ जाएगा, इस बात का भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जब हुई दोषवान, मैं हुई पापी, तो परलोक मेरा सुधरने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा इस बात से भी कोई कष्ट, नया कष्ट नहीं है। तो और बताते हैं कि पिता के मरने का भी मुझे शोक नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो इस सृष्टि की संपूर्ण सत्यता में सबसे बढ़कर सत्यता है। मृत्यु को देख करके रोना, यह तो सृष्टि के विधान का अपमान करना है ना। ये तो होती है, ये तो जरूर होती है। फिर मेरे पिता तो कितने बड़े पुण्यवान थे, इतनी बड़ी पृथ्वी के वे स्वामी थे, बड़ा उन्होंने यश प्राप्त किया, पुण्य प्राप्त किया, लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र प्राप्त किए, और राम जी के विरह में उन्होंने प्राण त्यागे। तो मुझे पिताजी के लिए शोक क्यों करना है? मुझे जो शोक हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि राम लक्ष्मण और सीता पैदल पैदल ऋषि मुनियों का वेश बना करके जंगलों में भटक रहे हैं, मृगशालाओं का उन्होंने वस्त्र पहन रखा है, जंगल के कच्चे पक्के जैसे भी फल मिलते हैं वो फल उनको खाने पड़ते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। उनके लिए गदरा क्या है? यही घास फूस पत्तियां हैं, इनके ऊपर ही सो जाते हैं। वर्षा से गर्मी से बचने के लिए उनके पास वृक्ष की छाया के अलावा कोई मकान नहीं है। वहीं पर वे सर्दी सहन करते हैं, वहीं पर वर्षा सहन करते हैं, वहीं पर धूप सहन करते हैं। इतना दुख होता है गुरुदेव, ये हर सांस के अंदर वो खटकता है दुख। जैसे कोई यहां सांस नली में कोई चीज अटक जाए, सांस लेने में तकलीफ होती हो, ऐसे मेरे तो यहां सांस ले सांस सांस के साथ दुख होता है। और ऐसा ही मेरे कुरोग लग गया कि इसकी कोई दवाई भी नहीं है। मैंने संपूर्ण संसार में इसके इलाज का उपाय ढूंढा, मुझे तो कोई उपाय नहीं मिल रहा है। मुझे रात को तो नींद नहीं आती है, दिन में मुझे भूख नहीं लगती है, छाती में जलन हो रही है, क्या बताऊं? मेरी माता की जो खराब बुद्धि है, वो खराब बुद्धि तो है बढ़ई सुथार का काम करने वाली, और हमारा जो परम हित था उस सुथार ने क्या किया, एक बंसोड़ा बनाया काटने के लिए, बंसोड़ा कुल्हाड़ी बनाई, हमारे हित को काटने के लिए उसने एक बंसुला बनाया। हमारा हित तो था भगवान के साथ ही रहते, अयोध्या में ही भगवान रहते, पर उसके ऊपर मेरी माँ की खराब बुद्धि रूपी सुथार ने एक बंसुला बनाया। और कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, और आपस की जो लड़ाई हुई, ये माँ के मन में ये विचारधारा आई, ये मेरा बेटा है, ये कौशल्या का बेटा है, ये जो मन में विचार आया, ये एक खराब लकड़ी है, इसके ऊपर ये कोई यंत्र कुयंत्र खराब यंत्र लिख दिया, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु, और उसके ऊपर खराब मंत्र क्या हुआ कि 14 वर्ष की जो अवधि बताई है वो अवधि के अंदर उस कुमंत्र को गाड़ दिया, कुयंत्र को गाड़ दिया। अब ये जितना भी कैसा भी ये साज सज्जा है, ये मेरे लिए बहुत खराब लगती है। तुम राजा बन जाओ, तुम राजगद्दी संभालो, तुम अयोध्या के नरेश कहलाओ, ये सब मेरे लिए बहुत ही खराब लग रहा है, क्या बताऊं। मिटई कुजोग राम फिर आए, ये मेरी बीमारी तो गुरुदेव कब मिटेगी, जब राम जी वापिस अयोध्या आएंगे। राम जी अयोध्या के महलों में विश्राम करेंगे, मैं उनका अयोध्या के अंदर चरणों का सेवक बनकर उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तभी ये मेरा कुरोग मिटेगा, नहीं तो ये रोग मिटने वाला नहीं है। भरत जी के ऐसे विनय भरे वचनों को सुनकर के सब ऋषि मुनि बड़े आनंदित हो गए और भरद्वाज ऋषि कहने लगे, तात करौ जनि सोच विशेषी, भरत तुम कोई चिंता मत करो, तुमको राम जी के चरणों के दर्शन जरूर होंगे, उससे तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। अब एक बात है भाई, ये क्या महाराज, कि तुम हमारे यहाँ अतिथि बनकर के आए हो, तो हम तुमको एक आदेश देते हैं कि हमारे पास जो भी यहाँ कंदमूल फल वगैरह जो भी है, हम ऋषि मुनियों के पास तो रहे भी क्या, उस कंदमूल फल से हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं, हम दे ही ले करी छू, हम तुमको देवे और तुमको वो लेना ही पड़ेगा, प्रसन्नता से लेना पड़ेगा, संकोच नहीं करना पड़ेगा, संकोच मत करना, जैसा भी हम तुम्हारा स्वागत करें उस स्वागत को तुम्हें स्वीकार करना होगा। मैं एक ब्राह्मण का भोजन कैसे करूं, क्षत्रिय हूं, राज परिवार से जुड़ा हुआ हूं और ब्राह्मण है, इन लोगों के पास तो फल फूल ठीक है आते ही हैं, परंतु इनके यहां भोजन करना कैसे उचित होगा, परंतु इन्होंने आज्ञा के रूप में कह दिया है, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो ये सोचेंगे कि अच्छा तुम हमारे दिए हुए प्रसाद को भी स्वीकार करना नहीं चाहते हो, इनके अंदर भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। अब उनके उहापो मच गई, क्या करूं क्या नहीं करूं। अंत में उन्होंने यही विचार किया, उन्होंने चरण वंदन करते हुए उनसे यही निवेदन किया कि हमारा सिरधरि आयसु करई तुम्हारा, मैं आपके आदेश का पालन अपने सिर से भी पूरा करूंगा महाराज, ये मेरा धर्म है, आप जैसा कहेंगे मैं कंदमूल फल वगैरह ले लूंगा। भरत की ये विनयशीलता देखकर ऋषिवर ने उसी समय अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई आप लोग भरत की पहुनाई करो, भरत के मेहमानी करो, अतिथि सत्कार करो, कन्नमूल फल लेकर के आओ। अच्छा महाराज, सिर झुका करके आज्ञा मानी, अपने काम में लग गए। इधर अगस्त ऋषि के भरद्वाज ऋषि के मन में आया कि देखो हमने भरत के लिए तो बोल दिया है, परंतु जैसा देवता होता है वैसी उसकी पूजा की जानी चाहिए, तो जैसे मेरे यहाँ अतिथि आए वैसे इनका सबका सत्कार उसी ढंग से होना चाहिए। उन्होंने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करते ही रिद्धि सिद्धि उनके सामने आई और रिद्धि सिद्धि आकर के उनको आज्ञा दी कि देखो भाई इन सब का तुम सत्कार करो। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज पहुनाए करि हरहु श्रमा कहा मुदित मुनिराज। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि देखो रिद्धि सिद्धियों ध्यान से सुनो, ऐसे अतिथि फिर कभी नहीं आएंगे, वो याद रखना। राम जी के विरह के अंदर व्याकुल हुआ अतिथि हमारे यहाँ आया है, छोटा मोटा अतिथि नहीं है, राम जी के विरह में डूबा रहने वाला, छोटे भाई के साथ आया है, पूरे अयोध्या के समाज के साथ आया है, इसकी तुम्हें पहुनाई करनी होगी। ऐसी पहुनाई करो, बहुत दूर से अयोध्या से चल के आए हैं, पहुनाई माने अतिथि सत्कार हो, तो ऐसी पहुनाई करो कि कि इनका सारा श्रम दूर हो जाए, परिश्रम रहे ही नहीं। अच्छी बात है महाराज। रिद्धि सिद्धि तो अपने को बड़ भागिनी मानने लगी। रिद्धि सिद्धि दोनों आपस में बातें करती हैं। ओहो, आज तो हमारा रिद्धि सिद्धि होना सफल हो गया। राम का छोटा भाई, और वो भी राम जी को मनाने के लिए जा रहा है। क्या ये भाई है? अयोध्या में कोई रवाना नहीं हुआ राम जी को लाने के लिए, कोई रवाना नहीं हुआ। एक भरत ही रवाना हुआ। गुरु भी थे, ऋषि भी थे, प्रजा में इतने लोग थे, साथ साथ तो रवाना हुए, पर बाद में कोई उनके साथ नहीं गया। और ये बेचारा देखो, राम का भाई उनको मनाने के लिए जा रहा है। इसकी तो आज सारे पूर्ववासियों की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है। सारे समाज को सुखी करना है, सब राम के विरह में दुखी है। यदि सबको हमने सुखी नहीं किया तो हम काहे के रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धियों ने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही करेंगे। उसी समय में उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर तत्काल मकान बना दिए, बड़े बड़े विमान। विमान बोलते हैं, अपने तो विमान बोलते हैं हवाई जहाज को, लेकिन विमान बोलते हैं, असली विमान तो बोलते हैं जो सात मंजिला मकान होता है ना, उसको विमान बोलते हैं। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, पांच मंजिल, छह मंजिल और सात मंजिल। सात मंजिल का जो होता है उसको विमान बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है। तो सतमंजिले मकान भी उनके सामने कोई खास नहीं थे। अनेक प्रकार का भोग, विभूति, ऐश्वर्य इतने रखे हुए थे कि देवता लोग भी अचंबा करते कि अरे हमारे देवलोक में इतनी सामग्रियां नहीं है, देवलोक में सामग्री नहीं। दासी दास इन सब का खूब वहां पर जमघट लगा हुआ, हर मकान में हम आइए साहब, पधारिए साहब। इन सब के लिए अगवानी करने के लिए दास दासियां नियुक्त थी। ऐसा सामान, ऐसी सुव्यवस्था कि देवलोक में स्वप्न में भी नहीं। देवलोक होता है ये सब भोग सामग्रियों का केंद्र माना जाता है। तो और सपने में देखो कई चीजें आदमी बना ही ले, पर देवताओं को भी कभी सपना आए तो ऐसा सुख नहीं मिल सकता जो आज भरत जी को यहां मिल रहा है। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि दे ही। जिसकी जैसी रुचि, ऐसे ऐसे मकान सबसे पहले उनके सामने उपस्थित किए। ये सारा का सारा मुनि का तपबल का प्रभाव था, और ऐसा तपोबल का प्रभाव कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में डूब गया। रे ये क्या बन गया, ये जंगल में क्या बन गया। भरत जी ने जब ये मुनि का प्रभाव देखा तो बड़े बड़े लोकपतियों का ऐश्वर्य भी मामूली दिखाई, कुछ नहीं, मुनि के ऐश्वर्य के सामने कुछ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों का वैराग्य भी ढीला हो गया। वैराग्यवान लोगों ने समझा, ज्ञानियों ने समझा कि अरे हमने तो आज तक संसार के मलिन भोग और ऐश्वर्य से वैराग्य किया है, इनसे वैराग्य करना बड़ा मुश्किल है। देखत विरति बिसारई ज्ञानी, ज्ञान भी विरति को माने वैराग्य को भूल जाते हैं। अर्थात ज्ञानियों के मन में भी इन सुंदर पदार्थों को देखकर रुचि पैदा होती है। कितने दिव्य है आसन, शयन, सुबसन, बिताना, वन वाटिका, बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, खाने का, सोने का, वस्त्र आदि का, और हर एक महल के अंदर कितने कितने वन वाटिका और तरह तरह के चीं चपार करने वाले पक्षी हैं, अच्छे अच्छे फुलवाड़ियां हैं, और फल अमृत के समान मीठे हैं, और वहां की कुएं बावड़ियों का जल एकदम निर्मल है। ये सब देख कर, और असन पान सुचि अमी अमी से, भोजन पदार्थ इतने अमृत के समान मीठे, ध्यान देना, देख ही लोग सकुचात जमी से। संयमी पुरुष होते हैं, संयमी पुरुष वे संयमी पुरुष भी ऐसे पदार्थों को देख करके उनका संयम भी सकुचा गया। इतने संयमी पुरुष जो खाने में पीने में हर व्यवहार में संयम रखने वाले, इतने अच्छे पदार्थ इनको नहीं खावे तो गड़बड़। माने उनके मन में आए कितने अच्छे पदार्थ है, तो जिन पदार्थों से संयम किया था उन पदार्थों से संयम करना तो ठीक था, पर इनसे संयम करना मुश्किल है। इतने सुंदर पदार्थ, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, सभी के महल में कामधेनु, सभी के महल में कल्प वृक्ष लगाया हुए सबके रहने के स्थान में। इंद्र को भी पता चला तो इंद्र भी वहां पर ही देख करके अचंभा करे, इतना ऋषि का वैभव। और वहां पर मंद सुमंद शीतल वायु चल रही थी, वसंत ऋतु आ गई, सब प्रकार का सुलभ पदार्थ सरक चंदन बनितादि का भोगा, सब लोग ये सब देख देख के आश्चर्य करने लगे। परंतु ये देखो इतना वैभव क्यों दिखाया हो, इतने वैभव की ऋषि को आवश्यकता क्या थी? भोजन करा देते आराम से, फल फूल दे देते, जिमो जिमो भाई हमारे पास तो ये है, इतना वैभव क्यों दिखाया? इतना वैभव इसलिए दिखाया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए ये बताने के लिए दिखाया, भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसमें भक्ति का क्या मतलब? अब देखो क्यों दिखाया, उसका रूप है। देखो संपति चकई भरत चक मुनियास खेलवार, ते निशी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। इतना बड़ा ऐश्वर्य था, उस ऐश्वर्य में हमारे भरत जी महाराज की क्या दशा है बताओ? कि संपत्ति चकई, जितना संपत्ति वैभव ऐश्वर्य था वो तो है चकवी, और भरत चक, और भरत जी महाराज है वो है चकवा। सारी संपत्ति चकवी, भरत जी है चकवा, और वो जो आश्रम है वो है आश्रम पिंजरा, और मुनि आयस खेलवाड़, मुनि ने जो आज्ञा दी वो खेल था। तो पिंजरे में रात्रि में चकवार चकवी को अंदर रख दो, चकवी यूं मुंह रखेगी, चकवा यूं मुंह रखेगा। चकवा चकवी रात्रि में मिलते ही नहीं है, यूं अलग अलग मुंह रखते हैं। तो भरत जी महाराज को इस सारे वैभव से कोई मतलब नहीं, भगवान में इतना प्रेम, इतना प्रेम कि जहां ब्रह्मा जी भी संपत्ति को देख करके विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य में डूब जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और संयमी पुरुष भी उन संपत्तियों से वैराग्य प्राप्त करने में, संयम करने में मुश्किल हो रही है, वहां ब्रह्मा जी महाराज के लिए कोई बड़ी बात उन्होंने मन ही नहीं लगाया उधर। क्यों? कि कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भगति कर भावे विषय कमाए। तो भाई ये मन तो एक तरफ ही चलेगा, चाहे संसार के वैभव में ले चलो चाहे भगवान की तरफ ले चलो। तो भरत जी महाराज ने अपने मन में भगवान को बसा रखा था, ये सब संपदे कुछ मन गया ही नहीं उनका, चकवे की तरह रहे। राखे भाव भिनुसार, प्रातः हुआ, प्रातः काल तक यही होता रहा उनका, उन्होंने कुछ नहीं किया, संपत्ति से एकदम विमुख रहे। कि न निमज्जनु तीरथ राजा नाय मुनि सिरु सहित समाज। भरत जी महाराज ने यह भी नहीं कहा कि वाह महाराज कितना वैभव आपने दिखाया है, ओहो आपका तो वैभव बड़ा विचित्र है, क्षण भर में आपने महल बना दिए, क्षण भर में। कुछ नहीं कहा। और प्रातःकाल हुआ, नाये धोए, ऋषि को प्रणाम किया कि महाराज अब हम आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। अपने में से तो भाई कितना ही गुणगान गाते, धन्यवाद देते, समारोह करते, और भरद्वाज ऋषि को कितना कितना बोलते पता नहीं है। लेकिन यहां भरत जी महाराज ने ये भी नहीं, उनको पता ही नहीं है, भगवान के प्रेम में विरह में डूबे रहने वाले भरत जी को कुछ पता नहीं कि कोई यहां कुछ है क्या, कुछ है ही नहीं उनके लिए। ऋषि आयसु अशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभाखी। और ऋषि की आज्ञा को अपने सिर पर रखा और फिर जो है दंडवत प्रणाम करके और वो वहां से रवाना हो गए। कैसी विचित्र बात, चले चित्रकूट चितु दीने, राम सखा कर दीने लागू चलत दे धरी जन अनुराग। कोई रस्ते में भी बात नहीं हो रही कि वाह भरद्वाज जी का ऐश्वर्य कैसा है, ऐश्वर्य कैसा है, कुछ नहीं हो रहा है। भरत जी महाराज एक ही बात पूछते हैं, निषाद राज इन मार्गों से राम जी गए थे कि हाँ, तो लखन राम सी पंथ कहानी, राम जी की सीता जी की लक्ष्मण जी की कहानी आपस में बातचीत कर रहे हो। पूछत सकई कहत मृदु बानी, निषाद राज से पूछते हैं और निषाद राज बड़े प्रेम से बताते हैं लखन राम सी पंथ कहानी। देखो भरद्वाज ऋषि तक तो निषाद राज स्वयं राम जी के साथ आए थे, भरद्वाज ऋषि के बाद कुछ दूर और आगे चलने पर राम जी ने उनको विदा कर दिया था। तो कहते ये स्थान मेरा देखा हुआ, ये देखा हुआ, ये देखा हुआ। निषाद राज ने यह भी नहीं कहा कि महाराज आपकी जैसी पहुनाई की है, अतिथि सत्कार किया है, मेहमानी की है, ऐसा तो राम जी का भी नहीं किया। राम जी की जरूरत नहीं थी, राम जी जब वनवास में ही थे। देखो आप गहराई से विचार करो कि भरत जी को राजगद्दी मिलने वाली और भरत जी ने राजगद्दी नहीं ली, तो भाग्य में लिखा हुआ तो देखो आ ही जाता है ना। तो वहां राजगद्दी छोड़ी तो यहाँ एक नया ही राज्य बसा दिया। अयोध्या में ऐसे महल नहीं जैसे यहाँ महल, अयोध्या में ऐसे भोग पदार्थ नहीं जो भरद्वाज ऋषि के यहाँ में। जो आदमी भोगों का त्याग करता है उसके लिखा हुआ भोग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इधर मन ही नहीं लगाता। किसी ने भी तो नहीं कहा कि देखो कैसा इन्होंने हमारा आदर किया है। लखन राम सी पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदु बानी, वो बड़े प्रेम से उनको बताते चले जाते हैं। राम बास स्थल विटप बिलोके, इधर राम जी महाराज की जगह जगह जहां पर ठहरने की जगह थी ये यहाँ ठहरे और इस वृक्ष के नीचे ठहरे, तो भरत जी महाराज रोते बिलखते उस वृक्ष के चिपट जाते हैं, जिस जगह को देखते उस जगह को प्रणाम करते हैं। राम बास स्थल विटप बिलोके उर अनुराग रहत नहीं रोके। भरत जी महाराज कभी कभी रो पड़ते, रोकना चाहते थे कोई रुके नहीं, उनका अनुराग हृदय से प्रकट हो ही जाता था। भरत जी की ये दशा देवताओं ने देखी तो खूब उन्होंने फूलों की वर्षा की। देवताओं ने देखा कि अब हम क्या करें, जो भी कोई है भरत जी की तो सब सेवा में लगे हुए, हम क्या करें। किए जाय छाया जलद सुखद बहई बरबात, तसमगु भय उन राम कह जस भा भरत ही जात। राम जी के चलते हुए ऐसा मार्ग नहीं बना जैसे आज भरत जी के समय में बन रहा है, खूब छाया कर दी उन्होंने। किए जाय छाया जलद और सुखद बहई बरबात, खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। राम जी के समय में ऐसे मार्ग नहीं बने जो आज भरत जी के समय में बन रहे हैं। जितने रस्ते में जड़ चेतन प्राणी पदार्थ आए ना, और जिन जिन को राम जी ने देखा और जिनको राम जी ने देखा और राम को जिन राम जी ने जिनको देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु उन लोगों ने जब भरत जी को देखा तो भरत जी को देखने के बाद तो उनका भावरोग मिट गया। देखो राम जी के दर्शन से बढ़कर भरत जी के दर्शन है। राम जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए, ते सब भये परम पद जोगु, लेकिन भरत दर्श मेटा भवरोग। भरत जी का दर्शन करने से तो उनका भवरोग ही मिट गया। भवरोग संसार में जन्मना मरना ये रोग है, ये और बीमारियां को हम बहुत बड़ा मानते हैं। हो साहब कितना बड़ी बीमारी है साहब, लकवा हो गया साहब, कैंसर हो गया साहब, हार्ट की बीमारी लग गई साहब, डायबिटीज लग गई, क्या क्या बीमारी भयंकर पाजी बीमारियां। पर संत महात्मा कहते हैं कि ये बीमारी कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है कि संसार में जन्मने और मरने का हमने अभी तक ये रोग मेटा नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिसे फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे। जन्मने और मरने के बीच में आने वाले रोगों को तो हम बहुत बड़ा मानते हैं कि साहब भयंकर बीमारी हो गई, क्या होगा पता नहीं है, क्या पता शरीर में गांठ है, क्या पता कैंसर है, क्या पता क्या है, बड़ी घबराहट होती है। परंतु भाई सबसे बड़ा घबराना तो इस बात का चाहिए कि भवरोग हमारा नहीं मिट रहा है। भरत दर्श मेटा भवरोग, भरत जी के दर्शन से वहां रहने वाले बेचारे गांव के लोग थे उनका भवरोग मिट गया। ये कोई भरत जी के लिए बड़ी बात नहीं है। राम जी महाराज जिनको मन ही मन से भरत 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 करते हैं, उस भरत के दर्शन से लोगों का भवरोग मिटता है, लोगों की मुक्ति होती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे एक बार जीवन में जो सच्चे मन से भगवान को याद कर लेता है, बारक राम बह कहत जग जेऊ, बारक राम, बारक माने एक बार, एक बार जो आर्त होकर के भगवान को पुकार लेता है वो स्वयं भी तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। और हमारे भरत जी तो राम जी के बहुत नजदीकी हैं, बड़े प्यारे हैं, राम जी के छोटे भाई हैं, उनके दर्शन से क्यों नहीं कल्याण हो। इधर इंद्र के मन में आया कि अरे भरत के मन में तो इतना प्रेम है राम जी के प्रति, भरद्वाज ऋषि ने परीक्षा ली है भरत के प्रेम की। हो उस प्रेम के अंदर जब वो भरत जी महाराज एकदम साफ निकल गए, तब इंद्र के मन में शोक हुआ कि अरे अब तो राम जी को ले ही आएगा। देख प्रभाव सुरे सही सोचू, अब इंद्र के मन में शोक पैदा हुआ। जग भल भले ही पोच कह पोचू, अब क्या है भाई लोग हमको अच्छा कहे बुरा कहे, पर भाई कोई ऐसा काम करो चाहे लोग चाहे हमारी निंदा करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन राम जी का और भरत का मिलना नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा उपाय होना चाहिए। अपने गुरु गुरु के पास बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी से जाकर कहा कि हे गुरुदेव क्या बतावे, हमारी तो बिगड़ी हुई बात जो है, हमारी तो सुधरी हुई बात बिगड़ने वाली है, बनी बात सुधरी हुई बात अब बिगड़ रही है। राम जी को जैसे तैसे मंथरा के माध्यम से, केके के माध्यम से, वरदान के माध्यम से हमने जैसे तैसे वन में भेजा, और राम जी तो बहुत संकोची स्वभाव के हैं और वो तो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, स्वभाव में बड़े कच्चे हैं राम जी, प्रेम के बड़े कच्चे हैं, और ये भरत जी है ये प्रेम के सागर है, ये तो राम जी को डुबा लेंगे, कोई ऐसा उपाय और करो ना, जैसा पहले वहां मंथरा का दिमाग खराब किया अब यहां किसी और का दिमाग करो खराब करो किसी को, कि दोनों की आपस में मिलने की बात ही न बने। तो बृहस्पति जी ने कहा कि अरे इंद्र तेरे हजार नेत्र हैं, हजार नेत्र, इंद्र के हजार नेत्र थे, ये जगह जगह नेत्र, हजार नेत्र सहस नयन लेकिन बिनु लोचन, तुम्हारे एक नेत्र नहीं है, हजार नेत्र होते हुए भी एक नेत्र नहीं है, क्या ये बुद्धि का ज्ञान का नेत्र नहीं है, समझ का नेत्र नहीं है, तू सोच नहीं रहा है, किसके पास में जाकर माया करवा रहा है तू, मायापति सेवक सन माया, माया के पति हैं राम जी, उनके सेवक के पास में आकर तू माया फैलाने की बात सोचता है, अरे उल्टा ही तुम्हारे गले में आ पड़ेगी ये माया, तुम्हारे गले में आ जाएगी, चुप रहो। तो उस समय तो नहीं हुआ, देखे अयोध्या में भी तो हम ही नहीं तो माला, हम ही नहीं तो माया फैराई थी, माया फैलाई थी महाराज, अब क्या हो गया। अरे उस समय तो भगवान भी चाहते थे कि मेरे को राजगद्दी न हो, भगवान भी चाहते थे, नहीं तो भगवान यदि चाहे नहीं तो भगवान के संकल्प के बिना कुछ होता है क्या, और भगवान को कोई वनवास दे सकता है क्या, ऐसा नहीं है। तब के चुकीन राम रुख जानी, राम जी का भी यही रुख था कि वन में गए बिना ये राम राज्य किस बात का भाई। राम राज्य का तो आदर्श तब होता है जब त्याग प्रधान जीवन होता है ना, तब राम राज्य होगा। तो मेरा अवतार तो वही वनवास के लिए है, केवल राजा के बाद राजा बन जाऊं, बाप के बाद राजा बन जाऊं, ये तो सब जगह होता है। मेरा अवतार इसलिए नहीं हुआ है, अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भगवान की सम्मति थी, तब तुमने मंथरा की बुद्धि को फेरा था। अब कुचाल करी हो यही हानि, अब मत करना।
तो अब करे तो क्या होगा महाराज, अपने तो करो, अपने कुछ न कुछ कौतुक करना
कि सुनो सुरेश, देखो इंद्र, राम जी के स्वभाव को तुम जानते नहीं हो। तुम राम के प्रति कितना ही कुछ कर लो, राम जी बिल्कुल सहन कर लेंगे। देखो राम जी को वनवास में भेजा तो राम जी ने प्रेम से सहन कर लिया ना। निज अपराध रिसाई न काहू, राम जी का कोई अपराध करे तो राम जी उसको प्रेम से सह लेते हैं, परंतु जो राम जी के भगत का अपराध करता है तो भाई वहां राम रोष पावक सो जरही। राम जी को देख आग जैसे भड़कती है, ऐसे राम जी को रोष आता है, क्रोध आता है। कई लोग आक्षेप करते हैं यहाँ कि राम जी को भी रोष आता है, राम जी को भी क्रोध आता है, हमको भी क्रोध आता है, तो फिर हमारे में राम जी में क्या फर्क हुआ। अरे ये तो देखो कि राम जी को क्रोध क्यों आता है, किस कारण से आता है, और हमको क्रोध क्यों आता है। हमारे तो स्वार्थ में बाधा पड़ती है तब क्रोध आता है, हमारे सम्मान में बाधा, हमको वस्तु आदि में बाधा, हमारे स्वार्थ में बाधा ही क्रोध आया। राम जी को जो क्रोध आता है वो जनता के हित में कोई बाधा डालता है, भक्त के हित में बाधा डालता है, तब क्रोध आता है। ऐसा क्रोध आना तो राम जी के स्वभाव की अच्छाई है। तो तुम यदि भगत का अपराध करोगे तो राम जी क्रोध में आ जाएंगे, तुमको पता नहीं दुर्वासा का। हाँ महाराज, तो भाई दुर्वासा को याद करो, इतिहास में बहुत से ऐसे ऐसे पुरुष हुए, इसलिए देखो तुम याद करो कि भगवान के लिए भरत के समान प्रिय कौन है। तुम सोचते होंगे कि हम देवताओं के काम के लिए राम जी आए हैं, ठीक है देवताओं के लिए आए, लेकिन भक्तों के लिए भी साथ में आए हैं। और आज भक्तों में भरत के समान कोई भगत नहीं है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, सारा संसार तो राम का जप करता है और राम जी है वो भरत का जाप करते हैं। इसलिए अपने मन में भी तुम राम जी के अनिष्ट की बात, राम जी के भगत के अनिष्ट की बात सोचना ही नहीं तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, तुम्हारा लोक परलोक दोनों में अपयश फैलेगा, रात दिन दुख पाओगे। इसलिए तुम तो हमारी एक ही बात मानो कि तुम तो भरत जी की शरण में आ जाओ। मानत सुख सेवक सेवकाई, राम जी का स्वभाव और बताता हूँ कि अपने सेवक की सेवा करने में राम जी को सुख मिलता है, और जो सेवक के साथ बैर रखता है, अपने सेवक के साथ बैर रखता है तो राम जी उसके साथ खूब बैर रखेंगे, नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसा आदमी। यद्यपि राम जी के लिए राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी का पाप पुण्य स्वीकार करते नहीं, परंतु जैसा संसार में वो कर्म करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। परंतु एक जगह भगवान विषम व्यवहार करते हैं भगत और अभगत के सामने। भगत होता है उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आती है वो सब जगह आनंद मनाता है, ये तो है समता। और जो भगवान का भगत नहीं होता उसको अच्छी परिस्थिति में सुख मिलता है, बुरी परिस्थिति में दुख मिलता है। इसलिए भाई भगवान निर्गुण निर्लेप अमान एक रस है, वो तो केवल भगत के प्रेम के कारण से सगुण बने यहाँ। इसलिए तुम जो है बिल्कुल इनके काम में हस्तक्षेप मत करना, कोई कुटिलता मत करना, और यदि करना ही है तो भरत जी के चरणों की शरण में आ जाओ। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत सिरो मनि भरत ते जनी डर पाऊ सुरपाल। तुम इतना अनिष्ट की सोचते हो, इतना ही तुम भरत के गुणों की तरफ विचार करो तो देखो ना, भरत से तुमको डर लग गया। अरे भगवान के भक्त से कभी किसी का अनिष्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम डरो मत। और ये निश्चित बात है कि भरत जी राम जी की ही आज्ञा का पालन करेंगे। और राम जी जब स्वयं वहां अयोध्या से यहाँ आए हैं तुम्हारा काम करने के लिए, तो राम जी भरत जी को ऐसा नहीं कहेंगे कि हम अयोध्या चले जाएंगे, लेकिन तुम इनके बीच में कोई बात खड़ी मत कर देना। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। तुम देखते हो कि भरत प्रेम करते हैं, इसे न जाने क्या हो जाएगा। ना ना भैया, कुछ नहीं, भरत का कोई दोष नहीं, तुम्हारा मोह है, जिस मोह से तुम्हारे मन में अनेक प्रकार की बातें हो रही है। ध्यान से सुनना, देवता लोग ये सब भगत की कथा सुनकर आनंदित हो गए, कहने लगे गुरुदेव राम जी की कथा हमको तो आज तक किसी ने सुनाई नहीं, सुनाई भी हो तो हम इतने मस्त नहीं हुए, लेकिन आज भरत की कथा सुनकर हम बड़े मस्त हो गए। सुनी सुरवर सुरगर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। इतना आनंद आया कि ओहो मैं क्या सोच रहा था और क्या बात होने लगी। देवता लोग आज भरत जी महाराज की कथा सुनकर आनंद में डूब गए, और भरत जी महाराज की जो सेना जा रही थी, पूर्वासी जा रहे थे, उन सब के ऊपर बड़ी प्रसन्नता से फूलों की वर्षा करते जा रहे थे, और सब देवता लोग आनंद में डूब गए। इधर भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम
जय
सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
जय जय राम।